ओम शांति। एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, भगवान कितना बड़ा है। पिता ने कहा, वो देखो आकाश में हवाई जहाज, उतना बड़ा। बच्चे ने कहा, ये तो बहुत छोटा है। पिताजी ने कहा, चलो तुम्हें दिखाता हूं, और एयरपोर्ट पर लेकर आए और एरोप्लेन को जो रखने की जगह होती है, जिसको एयरपोर्ट हैंगर कहते हैं, वहां लेकर आए। वहां पर बहुत बड़ा हवाई जहाज था। तो पिताजी ने कहा, इतना बड़ा। बच्चे ने कहा, अच्छा इतना बड़ा, फिर वो क्या था आकाश में। पिताजी ने कहा, जितना तुम उससे दूर हो उतना वो छोटा है, और जितना तुम उसके समीप हो उतना वो बड़ा है। और भगवान के लिए भी ऐसा ही है, जो उससे जितना दूर है उसके लिए वो भगवान छोटा है, और जो उसके बहुत समीप है, बहुत निकट है, उसके लिए वो परमात्मा बहुत बड़ा है। और भक्ति मार्ग में तो हमने उसे बहुत ढूंढा, और फिर वो मिला, और मिलने के बाद हमने उसे कई बार खो दिया। कैसी अद्भुत घटना है। बहुत प्रयत्न किए और भगवान को पाया, और भगवान मिल गया, और मिलने के बाद उसे पुनः खो दिया। कैसे? उससे दूर जाकर। क्या इस ज्ञानी योगी जीवन में ऐसी भी कोई बातें हैं कि जो हमें भगवान से ही दूर लेके चली गई? रहना चाहते हैं हम सभी उसके समीप, परंतु उससे दूर हो गए। क्यों हो गए? एक प्रश्न है। जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे तो कैसा उमंग था और कैसा उत्साह था। धीरे धीरे वो उमंग, वो उत्साह सब सब कम होते गया, सब कुछ सामान्य सा हो गया। एक लेखिका है, रेचल कार्सन, उसने किताब लिखी है सेंस ऑफ वंडर। लेखिका की उम्र लगभग 70 वर्ष है और उसने लिखा कि पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने जीवन को जिया नहीं, मुझे फिर से जीवन को जीना है, फिर से जीवन को समझना है, फिर से जीवन क्या है, वो जो नवीनता है उसकी, वो जो फ्रेशनेस है वो अनुभव करना है। तो उसने एक 3 साल के बच्चे के साथ दोस्ती की और दोस्ती ऐसी की जो जो वो 3 साल का बच्चा करेगा वही वो करेगी। और उस बच्चे के साथ वो 1 साल रही। बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, वो भी चल रही है। बच्चे को हर चीज आकर्षित करती है, उसे भी वो आकर्षित करती है, जो जो वो उसने किया 1 साल तक उस बच्चे के साथ। बच्चे को आकर्षण है, आश्चर्य हर चीज का, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये सूरज कहां से उगता है, ये पत्तियां हरी क्यों है, आकाश नीला क्यों है। और उसने लिखा अपना अनुभव कि 1 साल बिताने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया था, वो जो विस्मय था वो खो गया था। तो इस जीवन में विस्मय का भाव फिर से लाना है। 2 शब्द है हिंदी में, एक है आश्चर्य, एक है विस्मय। किसी भी चीज से आश्चर्यचकित नहीं होना है। आश्चर्य और विस्मय में अंतर है। शब्दकोश कहता है दोनों समान है। आश्चर्य अर्थात बाहर, विस्मय अर्थात अंदर। आश्चर्य अर्थात अच्छा ऐसा हुआ, ये लोग ऐसा करते हैं, यहां पर भी ऐसा होता है, अर्थात ड्रामा का राज पूरा समझानी है। विस्मय अर्थात ओहो आहा अच्छा ये बात है। मुरली विस्मय से सुननी है, अच्छा ये बात हमको तो पता ही नहीं थी। अमृत वेला विस्मय से, ओहो किसने उठाया, कैसा अमृत का ये समय है। जब जब विस्मय जीवन में होगा, वो विस्मय नवीनता लाएगा। खो गया है विस्मय, किसी चीज का हमें कोई विस्मय नहीं होता है, सब कुछ सामान्य सा लगता है। वही मुरली, वही अमृत वेला, वही दिनचर्या, वही जगह, वही डिपार्टमेंट, वही सारे लोग, वही सीनियर, वही जूनियर, वही साथी, सब सम सेम सेम, क्या पुरुषार्थ करे। हर बार पुरुषार्थ किया, हर बार नए संकल्प किए नए वर्ष में, और कितने नए वर्ष आए और चले गए पता ही नहीं। विस्मय ही नहीं, विस्मय का भाव, वंडर। एक है सरप्राइज, आश्चर्य, आश्चर्यचकित नहीं है, पर विस्मय है, ओहो आहा ये क्या है, वो क्या है, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हर चीज उन्हें आकर्षित करती है। समुद्र के तट पर जाएंगे, वहां से सीपियां बीनेंगे, पत्थर इकट्ठा करेंगे, और वॉकिंग करने वाले और जॉगिंग करने वाले लोगों को ये व्यर्थ लगता है। उनको लगता है ये पत्थर वगैरह इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है, बच्चों का काम है। वो विस्मय खो चुका है जीवन से। पर छोटे बच्चे को जैसे हर चीज आकर्षित करती है, ये क्या होता है, ये कैसा है, उसी तरह फिर से रूहानी बचपन में लौट जाना, ईश्वरीय बचपन में लौट जाना है, और हर चीज को आश्चर्य की तरह देखना है। एक नया विजन, अमृत वेला क्या है, ये कैसे अशरीरीपन का अभ्यास किया जाए, कैसा इसको नया बनाया जाए, कैसे नई शुरुआत करे दिनचर्या की। क्या वही संकल्प, वही पुरानी बातें, वही दुख की बातें, और स्वयं को फिर से छोटा बनाकर, आश्चर्य से भरकर प्रश्न पूछने हैं ढेर सारे अपने आप से, ये क्या है, वो क्या है। संशय नहीं, संशय की अवस्था तो हम पार कर चुके हैं, संशय के कारण नहीं, विस्मय के कारण प्रश्न पूछने। एक एक शब्द मुरली का पकड़ना, एक एक वाक्य पकड़ना, उसकी गहराई में जाना, अच्छा ये है। जैसे आज की मुरली बाबा परिक्रमा करते हैं, देखना है परमात्मा परिक्रमा कर रहा है सृष्टि की, जैसे भगत मंदिर की परिक्रमा करते हैं, भगवान परिक्रमा कर रहा है। नवीनता आएगी। एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है H.W. Lawrence, कि एक छोटे बच्चे ने एक दिन पूछा कि अंकल ये झाड़ के पत्ते हरे क्यों है। वो सोच में पड़ गया, क्या बताऊं। कोई दूसरा माँ बाप या कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसको कहते बस हरे होते चुप बैठो, पढ़ाई की तरफ ध्यान रखो, फालतू प्रश्न नहीं पूछा करो। फिर इस लेखक ने लिखा कि मैं सोचा उसको बताऊं, ये एक केमिकल, एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से होते हैं। पर फिर क्लोरोफिल हरा क्यों है, वो भी तो प्रश्न रहता है। उसने उस बच्चे को कहा कि बेटा मुझे पता नहीं, जब पता चलेगा तो तुझे बताऊंगा, अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं। फिर से छोटा बच्चा बन जाना और ये समझना, मुरली का हमने जो कुछ समझा है कुछ भी नहीं समझा। अव्यक्त मुरलियों में एक शब्द बार बार आता है, कौन सा, समझा। क्यों आता है, समझाने वाला ये क्यों पूछ रहा है, शायद उसको संशय है कि सामने वालों ने कुछ भी नहीं समझा है, इसलिए तो पूछता है बार बार, समझा समझा समझा। जगदीश भाई कहते थे कुछ भी नहीं समझा बाबा, समझा होता तो तीव्र पुरुषार्थी होते, कुछ भी तो नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझना, नहीं समझा, ये भाव भी विनम्र बनाता है। और उसी भाव से यात्रा आरंभ करनी है कि अब तक हमने जो ज्ञान सुना, सुनाया, समझाया, हमने अभी बहुत कुछ नहीं जाना है, और मुझे जानना है, मुझे समझना है क्या है ये। सुन रखा है स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात अचल डोल, सुन रखे है सारे शब्द, कर्म बंध कर्मातीत, बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त, पर ये केवल शब्द है बस, अनुभव तो बहुत दूर है। तो आश्चर्य से भरना है, विस्मय से भरना है, सुबह से उठते ही कौन सा समय है, उठते ही विचार लाने हैं मन में। एक अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है जो हमने कई समय तक किया, उठते ही वरदान पढ़ लेना साकार मुरली का, और उस वरदान को फिर योग में ड्रिल के रूप में प्रयोग करना, उसी वरदान को ड्रिल में बनो, कन्वर्ट कर देना। पढ़ लिया, पहला विचार ही संकल्प इतना शक्तिशाली, और फिर सब कुछ करते हुए योग के स्थान पर पहुंचने तक उसी ड्रिल का अभ्यास, जैसे हम लोग तो पांडव बन जाते स्नान वगैरह सब करके, तो वो ड्रिल अंदर ही अंदर चालू रहती है तब तक, और फिर वहां योग अभ्यास और फिर उसी ड्रिल का अभ्यास, जो भी वरदान है कुछ भी, उस टेक्स्ट को, उस शब्दों को पिक्चर में कन्वर्ट कर देना, उस शब्दों को एक मूवी बना लेना, उसमें कोई भी वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, उस वाक्य को ले लेना, और उस आधार से जैसे आज का वरदान, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद, ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई है। पिक्चर क्रिएट करना है, मैं चल रहा हूं, मेरा एक कदम, और उधर से भगवान की हजार गुना मदद आ रही है। इसी को देखना है मन में, मानस चित्र बनाना है, विजुअलाइजेशन, कि मेरा एक एक कदम हिम्मत का टूट के गिर नहीं जाना है, गिरे कि गए, चाहे कितनी भी परिस्थितियां कैसी भी हो, कितना भी विरोध हो, कितना भी संघर्ष हो, कितने भी दुख की पीड़ा की अवस्था हो, क्योंकि हम ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुप्त होने हैं, बाहर वालों से कोई माया नहीं आएगी। जो भी माया आएगी कहां से आएगी, ज्यादा परिवार से। ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है, एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। हमारे पेपर कहां से आएंगे, ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा। परीक्षाएं कौन लेगा, ब्राह्मण आत्माएं लेगी। मेरा एक कदम केवल हिम्मत का, गिर के रुक नहीं जाना है, थक नहीं जाना है, अब मैं थक गया, अब नहीं चलूंगा। और ये थकना भी सूक्ष्म है, चलना भी सूक्ष्म है, सब कुछ अदृश्य है, बाहर से तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, हार भी दिखाई नहीं देती, पराजय भी नहीं दिखाई देती, जीत भी दिखाई नहीं देती, सब कुछ सूक्ष्म है, संकल्पों के और भावनाओं के तल पर हो रहा है। ऊपर से दिखाई दे रहा है ये तो ठीक है, भाई आया बैठा, अमृत वेला किया, मुरली में भी था, धारणाएं भी सारी है, पर अंदर से आत्मा हार चुकी है, केवल कारोबार हो रहा है ऊपर से, बस और कुछ नहीं। और जिसकी हार हुई है, जिसकी, ये केवल उसी को पता है हार है या जीत है। इसलिए आश्चर्य विस्मय, अमृत वेला कुछ तो नवीन हो, हर दिन नया हो, हर दिन नई कमेंट्री, और विस्मय से बनना है ओहो आहा। मुरली उसी तरह ऐसी कौन सी पॉइंट है शायद मुरली की जो हमको पता नहीं, सारी पता है, इतने सालों से सभी सुन रहे, सब पता है, पर केवल वो शब्द है। चार चीजें खोजनी है मुरली से, शब्दार्थ, भावार्थ, गुणार्थ, वाक्यार्थ। एक एक शब्द का अर्थ क्या है। मुरली में शब्द आया, जैसे आज की मुरली ले लो, शब्द आया कर्मातीत, कितनी बार सुना है, हजारों बार सुना है, पर कितने अर्थ हमको पता है इस शब्द के। विच्छेद करना है, कर्म अधिक अतीत, कर्मों से ऊपर, कर्मों के अतीत, कैसे, क्या, कब, कौन से कर्म, छोड़ने देना है एक वाक्य पढ़कर, एक शब्द पढ़कर। अवस्था, अवस्था अर्थात क्या, स्थिति, स्टेज, शब्द शब्द पर चिंतन करना है, शब्दार्थ, अर्थ देखना है। डिक्शनरी खोलो हिंदी की, अर्थ देखो उस शब्द का क्या अर्थ है। परिक्रमा, भक्ति में परिक्रमा का क्या अर्थ है, परिक्रमा किसे कहा जाता है, परिक्रमा के कितने प्रकार है, एक एक देवता की अलग अलग परिक्रमा है, कृष्ण की अलग, देवी की अलग, विष्णु की अलग, इसकी उतनी, इसकी तीन, इसकी साढ़े तीन, इसकी आधी, सबकी अलग अलग है। उसका क्या महत्व है, क्यों की जाती है, कब से चालू हुई, किसने चालू की, भक्ति मार्ग में क्या महत्व है। शब्द, मुरली से कोई भी शब्द उठाना है, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, पॉइंट्स लिखना बंद, केवल शब्द लिखने हैं, एक ही शब्द लिखना, कर्मातीत, दूसरा शब्द परिक्रमा, अब ढूंढना इसका अर्थ क्या है, चर्चा करना, पूछना, परिक्रमा क्या होती है, और फिर इसका योग में प्रयोग करना। मैं आत्मा इस सृष्टि की परिक्रमा कर रही हूं, मैं आत्मा जितने सेवा केंद्र है बाबा के उनकी परिक्रमा कर रही हूं, मैं फरिश्ता मधुबन की परिक्रमा कर रही हूं। योग में नवीनता नहीं आएगी, नहीं तो वही वही योग चालू है। शब्दार्थ, भावार्थ, भाव क्या है इसका, किस अभिप्राय से यह शब्द बोला गया है, शब्द का अर्थ कुछ है, भाव कुछ और है, छिपे हुए भाव को ढूंढना है। तीसरा है गुणार्थ, गूढ़ अर्थ क्या है इसका, बाबा ये क्या कह रहे हैं, मैं घूमता हूं देखता हूं, स्थिति देखी, स्थान देखे, स्थितियों में ये देखा, स्थान में ये देखा, स्थान के इतने प्रकार थे। रोज की मुरली को ही चिंतन, अपने विचार, मुरलियों के शब्द और वाक्य और हमारे मन में उत्पन्न हो रहे विचार वाक्य एक हो जाए। विचार कुछ और चल रहे, मुरली कुछ और चल रही, दो अलग अलग दिशाओं में एक करना है। वाक्यार्थ, पूरे वाक्य का ही क्या अर्थ है, पूरा की पूरा वाक्य पढ़ लेना, जैसे संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो, स्लोगन, संकल्प खजाना, क्यों, खजानों के साथ लोग क्या करते हैं, संकल्प क्या होता है, इकोनॉमी अर्थात क्या, किन किन बातों में इकोनॉमी, संकल्पों की इकोनॉमी करना अर्थात क्या, अर्थात मन में कम संकल्प चलना, अर्थात मन में कम संकल्प कब चलते हैं, अमृत वेला, समान की अवस्था में, योग में, और ज्यादा संकल्प कब चलते हैं, निगेटिव, जब किसी ने हमारे साथ कुछ किया और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, जब निगेटिव की स्पीड बहुत है, व्यर्थ की स्पीड बहुत है, विकारों की स्पीड उससे तेज है, और सबसे तेज तो काम की स्पीड है, बेचैन व्यक्ति, बेचैन रहते हैं, हलचल रहती है अंदर, क्योंकि संकल्प उत्पात मचा रहे हैं, उपद्रव है जबरदस्त। गीता में कहीं लिखा है वो योगी जिसके संकल्प कम है वो विश्व की सबसे ज्यादा सेवा करता है, वो जिनके संकल्प बहुत ज्यादा है वो कम सेवा करते हैं। जिनके मन में संकल्पों का अभाव है मन शांत है, और जो संकल्प है श्रेष्ठ है विश्व के लिए, वो सबसे अधिक सेवा करते हैं। तो अमृत वेला विस्मय का भाव, मुरली में विस्मय का भाव, भोजन करते समय विस्मय का भाव, सारी दिनचर्या में विस्मय का भाव, नुमा शाम के योग में विस्मय का भाव, मुरली पढ़ते समय विस्मय का भाव, आत्माओं की सेवा करते हुए विस्मय का भाव, भोजन बनाते हुए विस्मय का भाव, ट्रैफिक कंट्रोल में विस्मय का भाव, ओहो इतनी व्यस्तता और उसमें अचानक ट्रैफिक कंट्रोल, मुझ आत्मा से शक्तियां फैल रही है, योग की ड्रिल में विस्मय का भाव, आहा ये कैसी ड्रिल है, वो ड्रिल करते हैं शारीरिक शक्ति के लिए, हम ड्रिल कर रहे हैं जिससे मन की शक्तियां बढ़ रही है। तीन बातें हर एक को रोज करनी है दिनचर्या, एक स्वयं से बातें, इनमें से जब तक जीना है तब तक ये तीन चीजें रोज होनी चाहिए। पहला स्वयं से बातें, ए मेरे मन कहां जा रहा है, तुझे क्या चाहिए, अरे मूर्ख मन कहां भटक रहा है, किधर जा रहा है, अभी तक पेट नहीं भरा, व्यर्थ से स्वयं से ही बातें करनी, आए किस लिए थे इस यज्ञ में और कर क्या रहे, आए थे सोचा था तपस्वी बनेंगे, योगी बनेंगे, सेवाएं करेंगे, कहां व्यर्थ में फंस गए, मेरे मन निकल बाहर, अपने आप से ही बातें करना। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, मुरलियों में आता है ये, हे मूर्ख मन क्या कर, भज गोविंदम, दूसरा बाबा से बातें, योग नहीं लगता है छोड़ दो योग, केवल बात करो, उसे अपने दिल का हाल सुनाओ बैठकर, बस जैसे वो सुना होगा ना, छोटा सा बच्चा रोज मंदिर में आता है, प्रार्थना करता है, चला जाता है। पुजारी को आश्चर्य लगता है, ये इतना छोटा बच्चा क्या प्रार्थना करता है। उसको पूछता, इधर आओ, तुम क्या रोज एक 5 मिनट प्रार्थना करके जाते हो, क्या मांगते हो भगवान से, तुमको समझता है भगवान कौन है। वो कहता है, वो सब मुझे नहीं समझता, मैं तो ए से लेके जेड तक ABCD बोल के चले जाता हूँ, और भगवान को कहता है इससे जो प्रार्थना बनानी है बना लेना, ABCD। तो भगवान को ये ज्यादा अच्छा लगता है या वो पंडित आता है रोज और अपने रटे रटाए मंत्र का जाप करता है, और वो भी बहुत दिखावा होता है उसमें। मंदिर में पुजारी अकेला है तो फटाफट 5 मिनट में पूजा हो जाती है, और जिस दिन अनुष्ठान है ऐसे 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 हाथ घूमता है, एकदम आंसू निकल आते हैं भगवान के याद में, रोंग पूरे रोमांच खड़े होते, ऐसा उन्माद प्रभु प्रेम का, 1000 लोग देख रहे हैं और उसके सामने पूजा हो रही है, तो कितनी अलग अलग कुछ कुछ होता है। और रोज जब कोई नहीं देखते, आए फटाफट पूजा की और चले, तब कुछ भी नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे पंडित पुजारियों से तो भगवान को उस छोटे बच्चे की प्रार्थना अधिक प्रिय है, जो रटे रटाए योग नहीं करते। अभी तक कई लोग वही योग करना चालू है, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, जो 10 साल पहले कमेंट्री सुनी थी जब ज्ञान में आए थे तब, अब तक वही कमेंट्री सेम चालू है, नवीनता कुछ लाई ही नहीं। डिस्टर्ब स्टेज ऑफ माइंड में केवल बातें करनी है, उसको सुनाना है, सारा कुछ सुनाते जाना है, सुनाते जाना है बैठ के। और बाबा को कौन सी भाषा ज्यादा अच्छी लगती है, मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, स्पैनिश, कौन सी भाषा? हिंदी, हिंदी जल्दी समझ में आती है उसको, हिंदी में एक भाई बात कर रहा है दूसरा इंग्लिश में, बाबा कहेंगे मेरी भाषा तो हिंदी है, इसके थोड़ा ये जल्दी समझ में आ रहा है, कैच कौन सा करता है ज्यादा, वो इसकी हिंदी जरा ठीक नहीं है, बड़ा उच्चारण गलत करता है ये जब भी बोलता है शिव बाबा आती है और शिव बाबा जाती है, गलत, इसकी बात नहीं सुनूंगा मैं, ये ब्रह्मा नहीं बोलती शिव बाबा बोलती है, अरे इतना गलत बोलता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, नो, रिजेक्ट। 10 बच्चे बाबा को याद कर रहे, एक अलग अलग भाषाओं में, कौन सी भाषा पहले जाएगी? भगवान के पास कोई शब्द थोड़ी पहुंचते, वाइब्रेशंस पहुंचते, कोई भी भाषा नहीं पहुंचती वहां, भाषा तो मनुष्य की बनाई हुई है, उसके पास क्या पहुंचता है, वाइब्रेशंस, प्रकंपन पहुंचते हैं। परम धाम तो निर्वाण धाम है, वहां शब्द है ही नहीं, जो दिल से पुकारेंगे, जिनकी आर्थ पुकार होगी। बीच में मुरली भी चली थी और कई लोगों ने उसको अपना रिंगटोन बना के रखा था, बाबा आ जाओ, ऐसा था ना एक वाक्य, मदद करो, हाँ ऐसे था ना एक, उदास हो जाओ कुटिया में आ जाओ, बाप से बात करो, शक्तिशाली बनना है शांति स्तंभ पर आ जाओ, व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, बाप समान बनने का संकल्प है बाबा के कमरे में आ जाओ। मुरली है ना, लगा हुआ भी है हिस्ट्री हॉल के बाहर, तो बाप से बात करना, दिल का हाल सुनाना, उसे बताना ये हो रहा है, वो टचिंग देगा, क्या करना है, किस समय क्या करना है। जीसस क्राइस्ट के शिष्य आते हैं जीसस क्राइस्ट के पास और कहते हैं कि वो लॉर्ड, तुम कहते हो जाके सेवा करो, पर हमको तो बोलना ही नहीं आता, हम क्या बोले, हमने कभी भाषण थोड़ी किए। वो सारे शिष्य तो यहां वहां काम करने वाले लोग थे, कोई मछुआरा था, कोई टैक्स कलेक्टर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, एक एक को पकड़ा और कहा चलो मेरे पीछे, और वो सब छोड़ के आ गए उसके पीछे। और अब ये कहता है कि जाओ मेरा संदेश दो, कहां संदेश दे और किसको, लोग पहले ही तुम्हारे विरोधी है और तुम कहते हो जाके संदेश दो, क्या दे, हमको तो बोलना ही नहीं आता है। वो कहता है गो, और तुमको क्या बोलना है, इट शैल बी गिवन अन टू यू एट दैट आवर, उस समय तुमको वो दिया जाएगा, क्या बोलना है, तुम बस जाके खड़े हो जाओ, क्या करना है, कैसे करना है, मैं तुमको बताऊंगा, अपने आप ऊपर से आएगा। उस समय इस परिस्थिति में क्या, हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है, डायरेक्ट किसी भी मुरली में डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया होता है। परिस्थितियां अलग प्रकार की होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। उसमें ज्ञान की कौन सी पॉइंट उठाकर कौन सी पॉइंट फिट करनी है, ये तो उस समय ही दिया जाएगा और उसी को टच होगा, उसको नहीं जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, परंतु उसको जिसकी बुद्धि बहुत स्वच्छ है। यहां पर टचिंग आएगी, इस परिस्थिति में क्या करना है। उस परिस्थिति में अगर मुरलियां खोल के बैठेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं कोई उत्तर, वो उत्तर तो ऊपर से आएगा, उस समय आएगा। तो दूसरा काम जो हरेक को करना है वो कौन सा, बाप से बात है। और तीसरा काम, ये त्रिमूर्ति कार्य, त्रयोपासना, तीन प्रकार की उपासना, तीन प्रकार की साधना, तीसरा कार्य है मुरली का चिंतन, ज्ञान चिंतन। जिस दिन ज्ञान चिंतन नहीं किया, अर्थात समझ लेना स्थिति डाउन होने वाली है। सुबह मुरली सुन ली, बहुत अच्छा अच्छा करके निकल गए, पर चिंतन नहीं किया, कोई पॉइंट नहीं निकाली मुरली से, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, अब टॉपिक्स लिखने चालू करना है। हर मुरली से सुबह सुबह 5 टॉपिक लिख के रख देना और अपने मन को काम देना कि आज सारे दिन भर इन टॉपिक्स पर मुझे चिंतन करना। जैसे आज की मुरली में एक जगह है स्नेह की पालना, टॉपिक है, लिख के रख दो और छोड़ दो सारे दिन भर, फिर सोचना। आज की मुरली में निर्मल शांत दादी से मुलाकात, लास्ट लाइन, भविष्य में क्या होगा, जय, क्या कहेंगे, जय देवी, जय देवी, जय देवी, टॉपिक लिखो, जय देवी टॉपिक है। फिर अब इसका विस्तार कैसे करना, वो जब भी दिनचर्या में समय मिले फिर विस्तार करना, जो लिख सके वो लिखे, जो नहीं लिखते वो मन में ही विस्तार करे। अब मन को काम दिया गया है, सुबह सुबह उसको 5 टॉपिक दिए गए, मुरली सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते लिख के हमने छोड़ दिए है, और दिनचर्या बहुत व्यस्त है, 1 मिनट का टाइम नहीं है उसमें, इतनी भागदौड़ है, मेहमान आ रहे हैं, सेवा है, मेगा प्रोग्राम चल रहा है। अब उस सब के बीच में ये हमारा इंटरनल काम है जो अंदर चालू है, अंदर से पता है ये टॉपिक है, जय देवी, जय देवी कब होता है, किसके लिए कहा जाता है, क्यों जय जयकार करते हैं भक्त, क्यों माँ की भक्ति करते, ये माँ की शक्ति की उपासना कब से चालू हुई। पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे अपने आप, और मन स्थिति ऊपर रहेगी। परिस्थितियां नीचे है, खींचाता नीचे है, कोई आके कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, शांति से थोड़ी बैठते हैं। कांटों का जंगल है, कांटे तो लेके खड़े हैं, मुरली क्लास पूरा हुआ और कांटे लेके लोग खड़े हैं चुबाने के लिए। संसार कांटों का जंगल है, इसमें मत समझना कि सब लोग आके फूलों की वर्षा करेंगे, और ज्यादा कांटे तो ब्राह्मणों के ही हाथ में है। किस लिए हाथ में, क्योंकि उनकी शुभ भावना है कि हम जल्दी संपूर्ण बन जाए। वो चाहते हैं कि हमें हर चीज का अभ्यास हो, निंदा में कैसे अचल अडोल रहे, कितनी शुभ भावनाएं हैं। क्यों निंदा करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हम संपन्न बन जाए। इसलिए तो कहना चाहिए, जो जिसको निंदा करनी है, ग्लानी करनी, जल्दी आओ, आओ और बोलो और जाओ, और हमें हिसाब चुक्त करने हैं। लोग कहे मीरा होई बावरी, सासू कहे घर फोड़ी रे, कहने दो जिसको, हिसाब चुक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी चुक्त हो जाएगा। और उनको धन्यवाद देना कि तुम्हारी वजह से आज मेरा हिसाब चुक्त हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, कितना सीखने को मिला। जो स्तुति करते उससे क्या सीखने को मिलता है, कोई आके कहे तुम बहुत ही बच्चे योगी हो, तुम महान हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, सुना और गए, और दूसरा कहता है सुना है तुम्हारा छुपके से किसी में मोह है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा बोलेंगे, ये नहीं बताएंगे किसने कहा। हम पूछेंगे किसने कहा, वो कहेंगे हमने सुना है ऐसा, तुम्हारी कुछ गड़बड़ चालू है आजकल, अच्छा है ना किसी ने बताया, हम खुद ही अपने आप को चेक करेंगे। कोई दूसरा आके कहे तुमको देख के तो एकदम नष्टो मोह लगता है, कितना एकदम छाती फूल जाती है, वाह एकदम योगी हूं मैं तो, और दूसरा कोई ऐसा कह दे तो दुखी। तो फायदा तो उसी से हुआ ना जिसने कहा, स्तुति करने वालों से कम फायदा होता है, निंदा करने वाले तो जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। आह्वान करते नहीं बैठना, पर अगर हो तो उससे भी सीख लेना है। तो ये तीन काम, स्वयं से बातें, बाबा से बातें और ज्ञान चिंतन, डेली ये तीन काम होने चाहिए। और जो पहली बात बताई थी विस्मय की, आश्चर्य से भरना है अपने आप को, विस्मय से भरना है, वंडर, ओहो क्या है ये, आज की मुरली क्या है उसमें, नए नए संबंध से देखने। आज जैसे सदगुरु बैठकर सुना रहा है, आज शिक्षक सुबह से ही सोच के रखना आज उसको इस रूप में याद करेंगे, आज वो धोबी बन के सुना रहा है, आज वो केवट खिवैया बन के सिखा रहा है, भाई बनकर, बहन बनकर, अलग अलग रूप है उसके। एक माता कहती थी मैंने शिव बाबा को अपना भाई बनाया, क्यों, पति बहुत तकलीफ देता था पवित्रता के लिए, झगड़े ही झगड़े, तो वो कहती थी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तू ही रक्षा कर। तो विस्मय से भरना है और ये तीन काम रोज करने। अच्छा, ओम शांति।
जिस दिल में तुम्हारी याद बसी वो दिल जैसे दिल वाला है, जिस दिल में तुम्हारी याद बसी वो दिल जैसे दिल वाला है, जो तन जग से जो तन जग सेवा में अर्पित वो तन चैतन्य शिवाला है, तन मन पावन हो जाता है, तन मन पावन हो जाता है वो सुख सावन
सारी बन जा।